ओम शांति। आज के प्रातः क्लास है 17 और 8। मीठी मीठी बच्चों को बाप ने अभी घर याद दिलाया, बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां कब जाना है कैसे जाना है वो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भूल गया। समझते हैं लाखों वर्ष यहां ही पार्ट बजाते हैं तो घर भी भूल जाते हैं। अभी बाप याद दिलाते हैं बच्चे, अभी घर तो बहुत नजदीक है, अभी चलेंगे अपने घर। हम तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूं तो चलेंगे। कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता है कब मुक्ति धाम जाएंगे, और मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सभी भूल जाते हैं, बाप को भी भूल जाते तो घर को भी भूल जाते। लाखों वर्ष डालने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अंधे बनकर ज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता है भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह मुक्ति धाम तो अभी तुम्हें जाना है, ऐसे थोड़े ही है कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको भी पता नहीं है भक्ति कब से शुरू होती है। लाखों वर्ष का हिसाब करेंगे उसकी तो कोई दरकार ही नहीं है, बाप को और घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा विनोद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अभी बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अभी मैं आया हूं तुमको ले चलने के लिए, तो घर चलना है, परंतु घर चलने के लिए पवित्र भी जरूर बनना पड़े। गंगा स्नान तो तुम करते ही आए हो, परंतु जन्म जन्मांतर भी गंगा स्नान करने से तुम कोई पवित्र थोड़े ही बने। अगर पवित्र बनते फिर तो घर चले जाते, परंतु तुमको तो घर का पता भी नहीं पड़ा, घर का भी पता नहीं पड़ा तो पवित्रता का भी पता नहीं पड़ा। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते दिल नहीं होती है। अभी बाप कहते हैं कि भक्ति कांड पूरा होता है, भक्ति में तो अपरमपार दुख होते हैं, ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा सुख तो तुमने 2500 वर्ष भोगा। और दुख भी तुमने 2500 वर्ष भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजू में थे तो फिर भी कुछ समझ थी, मास में भी एक बार मुश्किल से जाते होंगे। और फिर जास्ती टाइम भी लगता होगा, अभी तो बहुत जास्ती हो गया। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि अभी तो सुखधाम में चलना है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाए और याद से तुमको बड़ी खुशी होगी। जो बाप तुमको आधा तक सुखधाम में ले जाते हैं तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं अभी तुमको ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए एक तो पवित्र बनो और अपने सच्चरित्र को सुधारते जाओ। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का मोह का भी भूत होता है। ये मोह का भूत तो बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बनाए देता है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। तो ये पांच विकार बड़े कड़े भूत हैं, इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल जितना काम को छोड़ना मुश्किल, छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते हैं तो भी मोह की रग छूटती नहीं है। ये क्रोध भी मुश्किल से छूटता है। कहते हैं बच्चों को क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते हैं, कोई भी भूत ना आए, अभी उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो। बादल बाद में क्या होगा, प्रसाद करना छोड़ देंगे,
आती जाए।
जब तक मैं हूं पुरुषार्थ करते रहो, बाप कितना वर्ष रहेंगे। जबकि गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं। ब्रह्मा की बात नहीं बताई, कौन प्रजापिता ब्रह्मा 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं, बाप आते ही है 60 वर्ष के बाद। ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप कोई रह जाएगा क्या, बाप भी चला जाएगा। तो 40 वर्ष बैठ समझाते हैं, कितना टाइम बताया, कब से कब तक। सत्तर से लेकर 2000 ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी जाएगा तो ना, तो समझाने के लिए अच्छा ही टाइम देते हैं। 40 वर्ष कोई कम थोड़े ही है। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी देव किस बात में लगती है? जन्म जन्मांतर के पाप काटने में देर लगती है, यही मुश्किलात है। तो इसके लिए बाबा टाइम देते हैं, उसमें भी माया का पोजीशन बहुत होता है। माया एकदम भुलाई देती है। यहां बैठते हैं तो भी सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, अनेकों तरह बुद्धि चली जाती है। इसलिए 40 वर्ष का टाइम देते हैं समझाने के लिए, मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 दिन में सारा नॉलेज समझ सकता है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है। इस पवित्र बनने की बात पर ही कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, पहले हम ग्लानी करते थे ये ब्रह्मा कुमारियां बहन भाई बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बनेंगे तो भाई बहन कैसे बनेंगे, पवित्र कैसे बनेंगे? ये क्रिमिनल आई बदल करके सिविल आई कैसे बनेगी? 1768 की वाणी का दूसरा दिन। तो ये युक्ति बहुत अच्छी है, रियलाइज करना पड़े कि हम एक बाप के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो जरूर भाई बहन हो गए। ऐसा समझने में बहुत मदद मिलती है। सिविलाई बनाने की ही मदद है, ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना। अथवा मनुष्य को देवता बनाने, तो ये कर्तव्य का पूरा होता है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य कब पूरा होता है? 2018 में पूरा हो जाता है। अच्छा, जो भी मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं वो देवता बन जाएंगे 18 में पढ़ाई पूरी होगी या देवता बन जा रहे हैं? छठ प्रथम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, 78 से शुरुआत करें तो 2018 आता है। तो 2018 में तो समझानी पूरी होती है, रियलाइजेशन और चलता है। बाकी देवता बनने में भी तो टाइम लगेगा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन से धर्म की? देवी देवता सनातन धर्म की। तो कौन से ब्रह्मा द्वारा? प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है, और फिर ऐसे नहीं है कि दादा लेखराज ब्रह्मा जिनके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई उनका काम खत्म हो जाता है। नहीं, उस चोले से काम खत्म हो जाता है, उस चोले की पूजा नहीं होती है परंतु स्त्री चोले में उन्होंने जो काम किया वो तो पूरा होता है, तो स्त्री चोले की पूजा भी होती है और बाप तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाप का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोले जाते हैं कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये तो जानते हो कि भगवान निराकार है, निराकार की बुद्धि देह से उपरांत रहेगी या देह में धरी रहेगी? देह से उपराम रहेगी। देह से उपराम होने की निशानी है जो भी धर्म पिताएं आए उपराम स्टेज में रहकर अपने अपने धर्म की स्थापना की, निराकारी स्टेज में आए तो फाउंडेशन पड़ जाता है। परंतु उन धर्म पिताओं को तो भगवान कह नहीं सकते हैं, ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। कहते हैं ना भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे, तो भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान किसको कहा जाता है? समझ को ज्ञान कहा जाता है। तो बाप आकर के समझाने देते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ सुना के चले जाते हैं। सुन लिया समझा कुछ भी नहीं तो फायदा क्या होगा? भक्ति में ही चलते रहेंगे। भगवान को आकर परिचय देना पड़े, भक्तों को भगवान का परिचय तो है ही नहीं, तो बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। भगवान के बदली जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है उसी का नाम ठोक दिया। तुम कितना समझाते हो फिर भी समझते नहीं है कि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। समझाया जाता है जो देहधारी होते हैं वो तो पुनर्जन्म में जरूर आते हैं, ब्रॉड ड्रामा में भी आते हैं और शूटिंग पीरियड में भी आते हैं। हां देह में बुद्धि अगर ना धरी रहे, बुद्धि उपराम हो जावे तो निश्चय बुद्धि विजय के हो जावे, नहीं तो घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती रहती है। तो देहधारी से वर्षा नहीं मिल सकता, ब्रह्मा को देहधारी कहेंगे। ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से वर्षा नहीं मिल सकता, आत्मा को सुख शांति का वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा सिर्फ एक ही परमपिता परमात्मा से मिलता है। कोई भी मनुष्य मात्र कोई भी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये तो तुम बच्चे हो जो बाप को पहचान कर बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इस बाप को पाने के लिए तुम बच्चे कितने भटके हो। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाती थी, वो अभी बिचारी बनती थी और देवी देवताओं के इतने मंदिर ही नहीं थे। अभी तो देखो देवताओं के कितने चित्र कितने जगह रखे हुए हैं, ढेर के ढेर चित्र हैं और ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है, मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें ही भर गई। कितने शास्त्र बैठ करके पढ़कर सुनाते हैं, कहते हैं शास्त्र ऐसे कहते हैं, शास्त्र में ये लिखा हुआ है। अब शास्त्र तो ढेर के ढेर हैं और शास्त्रों को बनाने वाले भी ढेर के ढेर हैं। वास्तव में भारत के इतने शास्त्र नहीं होने चाहिए, भारत का एक सनातन धर्म है तो एक ही शास्त्र होना चाहिए। अथवा कहें कि हर धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए, हर एक धर्म का एक ही स्थापना करने वाला तो होता है, उनका एक शास्त्र होना। क्रिश्चियंस का एक शास्त्र, बौद्धियों का एक शास्त्र, फिर हिंदुओं के इतने ढेर के ढेर शास्त्र क्यों हो गए? इसका क्या रिजल्ट हुआ है? रिजल्ट ये हुआ कि और धर्म वाले अपने शास्त्र को अपने धर्म पिता को नहीं भूलते हैं और कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और भारतवासी, भारतवासी एक बाप को भूल गए, एक बाप की ग्लानी करते गए और औरों को अपना शास्त्र चुन लिया, शास्त्र बनाने वाला मान लिया। वास्तव में सच्चा शास्त्र तो एक ही है जिसमें सदगत गति सदगति का रास्ता बात ही बताते हैं, और शास्त्रों में कोई ऐसा रास्ता है नहीं, क्योंकि वो तो सब भक्ति है। कितने ढेर के ढेर शास्त्र और कितने मंदिर आदि बनाए। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, जो देवी देवताएं सतयुग में रहते हैं। और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो पतित होते हैं, पावन की पूजा की जाती है। वो पावन देवताएं थे जिनकी बुद्धि पावन होती है, उनकी बुद्धि चलायमान नहीं होती है, उनको मनुष्य कहा जाता है जो चलायमान बुद्धि वाले होते हैं। देवताओं को तो मनुष्य नहीं कहेंगे, पतित मनुष्य पावन देवताओं की जाकर पूजा करते हैं। बल हैं तो वो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है, और जिनमें दैवी गुण नहीं है वो फिर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पहले तो तुम खुद ही पूजी थे, फिर पुजारी बने, तो गायन है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पहले अभी विचारी भक्ति थी, फिर भी विचारी भक्ति हो गई। शूटिंग कहाँ होती है, कैसे है? जब निश्चय बुद्धि बनते हैं, एक बाप को पहचानते हैं, तो बुद्धि में एक बाप की अभिविचारी भावना रहती है। फिर जैसे जैसे बुद्धि अभिविचारी होती जाती है, वैसे वैसे भावना तामसी बनती जाती है। गिरते गिरते मनुष्य मनुष्यों की भक्ति करने लग पड़ता है। मनुष्यों की भक्ति करना, ये तो पांच तत्वों की भक्ति करना हो गया। ये शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है ना, अभी तो बच्चों को अपने मुक्तिधाम चलना है, जहां जाने के लिए इतनी भक्ति की है। अभी तुमको अपने साथ में ले चलता हूं, फिर वहां से तुम सत्यगु में चले जाएंगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए। पावन दुनिया दो है, मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। मुक्तिधाम में जीवन नहीं होता और जीवन मुक्तिधाम में जीवन भी होता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते आए। पहले जब शिव की भक्ति करते थे तो इतने नहीं दुख उठाए, अभिचारी भक्ति थी तो भक्ति में भी सुख था, भक्ति भी सतो प्रधान थी तो सतो प्रधानता में सुख होता है। बाद में भक्ति विचारी बनी, अनेकों को माथा टिकाने लगे, अनेकों की बात में हां में हां मिला, हां ये बात सच्ची है, ये बात ठीक है, तो इतने धक्के खाने लगे। अभी तुम कितने धक्के खाकर आए हो, तो गीत भी बनाया हुआ है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे दूर रहे? बाप से दूर रहे। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरी पहनते रहे, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं ये पतित पावन आओ और आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं आकर ज्ञान सुनाकर चले जाओ। बाप के सिवाय तो ऐसा पावन कोई बना ही नहीं सकता है। तो ये खेल 5000 वर्ष का है। लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये भी जानते हैं कि ड्रामानुसार सभी पुरुषार्थ करते रहते हैं। जिस प्रकार कल पहले पुरुषार्थ किया है उसी अनुसार फिर राजधानी स्थापन हो रही है। सभी जैसा सभी एक जैसा तो न पढ़ाई पढ़ेंगे और न राजधानी में एक जैसा पद पावेंगे। ये पाठशाला है, इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। राजा ही देने वाला योग है, जो देवी देवता धर्म के होंगे वो तो जरूर निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो संख्या भी एक्यूरेट होगी, तब जाति तो नहीं हो सकती और फिर गिनती भी नहीं हो सकती। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी जो भी है वो ही आकर के पाठ बजावेंगे। फिर मूल वतन में भी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर हम आते नई दुनिया में। सब सेक्शन वाले तो नई दुनिया में नहीं आवेंगे ना, बाकी वहां जाएंगे सब। अभी कोई गिनती करे तो गिनती कर तो सकते हैं, परंतु तो एक्यूरेट नहीं कर सकते। 17 वर्ष की वाणी का 30 वर्ष, शायद आगे चल करके बाबा बता भी दे कि टोटल कितने हैं। अभी तो बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गुयु गुयु पॉइंट सुनाता हूं, शुरू के समझानी में और अभी की समझानी में कितना फर्क पड़ जाता है, क्योंकि पढ़ाई में टाइम तो लगता है ना। फर्क से तो कोई आईसीएस पास नहीं हो जाएगा ना, नंबर बार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में सहजगी थी बैठ सके। तो पहले और आपकी समझाने में रात दिन का फर्क हो गया, दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को भूल गए हैं तो मैं आया हुआ हूं, कहता हूं तुम पावन बनो, अपन को आत्मा समझो, मां में एकम याद करो तो तुम जरूर सत्व प्रधान बन जाएंगे। अब सत्व प्रधान बनना तो जरूर है, और फिर यहां पार्ट बजाने भी आना है। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी, इसलिए पतित पावन बाप को याद करती है फिर से पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा और कितना पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उस कुदरत को देखा नहीं जा सकता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, अरे तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, मैं तो इतनी छोटी बिंदी हूं, इतनी छोटी बिंदी का तुम क्या साक्षात्कार करेंगे। अपनी आत्मा को भी कोई इन आंखों से देख नहीं सकते। हां समझाने से बुद्धि में आ जाता है कि आत्मा अति सूक्ष्म है और मैं आत्मा इस शरीर में हूं, मैं आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी हूं, तो जानने लायक हूं, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। आत्मा को ये सभी कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाते हैं फिर भी देखो, आत्मा कभी घिसती नहीं है, ये अविनाशी आत्मा है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वो दुनिया भी रिकॉर्ड तो घिस जाते हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी और उसमें भरा हुआ पार्ट भी अविनाशी। लेकिन कब बना ये कोई नहीं पूछ सकते। इनों को अनाज कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो तुम रावण को कब से जलाते आए हो और ये शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनाज काल से, पता ही नहीं मुझे हुए हैं, कुछ भी समझते नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं जैसे हूबहू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तुम जानते हो पहले हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर अभी बेहद की समझ आ गई है, वो दुनिया में होती है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। तो समझाया जाता है आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक मात्र भी दुख नहीं पाते हो। कहते हैं ना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, कोई वहां दुख दे नहीं सकता। नाम ही है सुखधाम, यहां तो सुख नहीं है। तो मूल बात है आत्मा को पावन बनाने की, बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो, अपनों को आत्मा समझो। पक्की याद करने के लिए करेक्टर्स बहुत अच्छी चाहिए। बच्चों को हर एक बात क्लियर करके समझाई जाती है। हर बात में नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात बाप बताते हैं, अभी तो दुनिया में फायदे की छुट्टी हो गई, अभी तो नुकसान ही नुकसान है। विनाश का समय आ जाता है फिर देखना क्या होता है। बरसात नहीं पड़ती है तो अनाज कितना महंगा हो जाता है, बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी देखो अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसे ही खटाके मारते रहते हैं। ऐसा समय आना है कि मनुष्यों को खाने के लिए दाना भी नसीब नहीं होगा। इतनी ही आपदाएं आनी है, उनको ईश्वरीय आपदाएं कह देते हैं। बरसात नहीं पड़ती है तो अकाल तो जरूर पड़ेगा ना, सभी तत्व तो बिगड़ने वाले हैं। जगह जगह बरसात हो जाती है तो कितना नुकसान कर देती है, कुदरती आपदाएं भी कम नहीं है। तुम बच्चे समझते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और तुम्हारी ये मापदंड है लक्ष्मी नारायण बनने की, तो अभी बाप तुमको फिर से नरसिंह नारायण बना दे। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं ना, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी बहुत कम पाएंगे। बाकी टीचर तो स्टूडेंट को समझाते रहते हैं और आगे चल करके भी समझाते रहेंगे। दूसरों को जब आप समान बनाते हैं तो मालूम पड़ जाता है ये अच्छा पढ़ते हैं और वे पढ़ाते भी। बाकी मूल बात है यात्रा की, याद की यात्रा है और सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तो मुझे याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको रूहानी यात्रा कहा जाता है। छोटे बच्चों को भी ये सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो, ऐसे नहीं सिखाना है बिंदी को याद करो। अगर ऐसे सिखा देंगे तो बच्चे मुझे जावेंगे, तो बोलो शिव बाबा को याद करो। उन बच्चों का भी हक है बाबा को याद करने का, उनकी बुद्धि में तो बाप की याद ही छप जाती है। वो ये नहीं समझेंगे कि अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है, अच्छा मीठे मीठे सिकिन दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद क्या गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।
और एक बात मालूम पड़ी बाबा ज्ञान में आने के बाद में, कि जो कृष्ण है तो उसको शादी विवाह होते तो बच्ची के साथ में छोटा सा वो लंगड़ा वाला कृष्ण देते हैं
है।
तो वो बच्चा है करके देते हैं ना सत्यु का, सत्यु का बच्चा है करके देते हैं ना
है। सत्यु का बच्चा लंगड़ा होता है?
नहीं नहीं लंगड़ा नहीं होता बाबा, लेकिन छोटा तो होता है ना।
वो संगम युगी कृष्ण है या सत्युगी कृष्ण है? शादियों में ब्याह में या जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों में जो परंपराएं निभाई जाती हैं वो सतयुग की परंपराएं हैं या संगम युग की परंपराएं हैं? संगम युग की परंपराएं हैं। संगम युग में लंगड़ा कृष्ण है माने कृष्ण वाली आत्मा पूरा ज्ञानी नहीं है, लंगड़ा लंगड़ा के चलने वाली है, पुरुषार्थ में तीखी दौड़ दौड़ने वाली नहीं है। बल सूर्य के व्यक्तित्व में प्रवेश है, लेकिन प्रवेश होने के बावजूद भी लंगड़ी है अपवित्रता की। वो कृष्ण की आत्मा कन्याओं माताओं को आकर्षित करती है।
बाल कृष्ण क्यों करते बाबू?
बच्चा है ना तभी तो मिट्टी खाता है, बड़ा हो जाएगा तो मिट्टी खाएगा। मिट्टी किसे कहा जाता है? देह अभिमान की मिट्टी होती।
मुरली में बोला है कि तुम्हारे पास प्लाट है तो स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर दो
है?
तुम्हारे पास प्लाट है तो स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर दो, तो बेहद में कैसे प्लाट होगा?
प्लाट बेच दो, ईश्वरी सेवा में लगा दो, ट्रांसफर हो गया। अरे किसी बात इतनी बात समझ में नहीं आती है?
स्थूल प्लाट हो
गया, स्थूल प्लाट नहीं है, है? बेहद में तुम्हारे पास धरणी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई कन्याएं माता ऐसी नहीं है तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम जैसे चलाना चाहो उनको वैसे चला सकती हो, है या नहीं है? हाँ ना नहीं करे बहुत चालाक है। तो जो तुम्हारी मुट्ठी में है उनको ईश्वरीय सेवा में लगा दो, अपनी मुट्ठी में न रखो, ट्रांसफर कर दो, तो तुमको भी क्या मिल जाएगा स्वर्ग में?
चित्र में दिखाया है कि ब्रह्मा की तरफ सरफ का बुरा है और नरक का बुरा दिखाया है, इसमें दिखा है कि ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना और माया के द्वारा नरक की स्थापना।
ये तुमने कहाँ पढ़ लिया, कौन सी किताब में, कौन से लिटरेचर में, कौन सी मुरली में पढ़ लिया कि शंकर द्वारा स्थापना होती है नरक की?
नहीं माया माया उसमें दिखा।
अच्छा शंकर को माया भी समझ लो, लेकिन स्थापना होती है या विनाश होता है?
गोला दिखाया।
हाँ वो गोले का विनाश होता है शंकर के द्वारा या स्थापना होती है? विनाश होता है। जब नरक का विनाश होगा तो स्वर्ग की अनुभूति होगी। 500-700 करोड़ मनुष्य नरकवासी हैं, नरक के कीड़े हैं, वो सब स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं। उनका जब तक विनाश नहीं होगा तब तक स्वर्ग की अनुभूति, स्वर्ग के वायुमंडल का भास नहीं होने देंगे देवात्माओं को, वो वायुमंडल को बिगाड़ेंगे संभालेंगे, बिगाड़ते रहे, अनिश्चय पैदा करते रहेंगे। इसलिए शंकर द्वारा उस नारकीय दुनिया का विनाश दिखाया गया है, विनाश का गोला। आग लगने वाली है उस नरक के गोले में, और ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काय की स्थापना, स्वर की स्थापना।
और समाधि स्थिति का भी बाबा तो आखिरी स्टेप है क्या
है?
शंकर जी को कहीं भी तपस्या करते हुए समाधिस्थ आंखें बंद कर दिखाते हैं?
आंखें बंद करके दिखाते हैं,
खुली रहती होंगी लेकिन
होंगी
नीचे रहती थोड़ी आंखें।
हाँ, जब ध्यान में पुतलियां ऊपर चढ़ेंगी तो आंखें छोटी ही दिखाई देंगी ना,
तो वो आखिरी की स्टेप है
माने अभी याद में नहीं रहता होगा। अरे अभी परसेंटेज में कम होगा, आगे चल के जास्ती होगा।
कंकणाकृति ग्रहण, कंकणाकृति ग्रहण बोलते हैं
क्या?
कंकणाकृति ग्रहण, ग्रहण ग्रहण के तीन प्रकार है बोलते हैं।
कंकण,
कंकणाकृति एक, और दूसरा खंडग्रास और एक खग्रास। उसका बेहद में क्या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण?
कंकण पत्थर किसको कहते हैं? सो नहीं मालूम है जो कंकण पत्थर वाला है तो उसको कंकण नाम दे दिया। खग ग्रास है माने पूरा ही ग्रास कर लिया, पूरा ही सूर्य डूब गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया, वो खग ग्रास हो गया। फिर आधा सूर्य खंड ग्रास है,
और जो बाण रहता है बाबा, कभी कभी जो बाण निकलता है ऐसा बाण निकलता है इधर से पूर्व से निकलता है, धनुष बोलते उसको, और तीन कलर रहते हैं उसमें,
इंद्रधनुष।
जो बरसात होती है और बरसात का वायुमंडल में जो छोटी 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 बूंदें हैं जिसे कहते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी उन बूंदों पर पड़ती है बहुत हल्की हल्की, और सूर्य वो पृथ्वी का गोला भी है बीच में, तो वो सूर्य की रोशनी उन बूंदों पर पड़ने के कारण अनेक प्रकार के रंग बन जाते हैं, सातों रंग। वो सात रंग गोल गोल दिखाई पड़ते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, उसको कहते हैं इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष है।
सबसे ज्यादा वो 4 बजे 5 बजे
आदि बरसात होने के बाद दिखाई देता है। कौन सी बरसात है? ज्ञान की बरसात है। ज्ञान की बरसात होने के बाद वो इंद्र देवता का धनुष दिखाई पड़ता है, पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। पहले नहीं दिखाई पड़ेगा, मध्य में नहीं दिखाई पड़ेगा, कब दिखाई पड़ेगा? बाद में। अंत में पुरुषार्थ संपूर्ण होगा या मध्य में या पहले? अंत में संपूर्ण होगा, तो सबको देखने में आएगा।
और बाबा, गंगा यमुना का मेल होता है तब सरस्वती प्रत्यक्ष होती है माना?
सरस्वती प्रत्यक्ष होती ही नहीं, सरस्वती तो गुप्त है। हाँ, गंगा गोरी है और यमुना काली है, दोनों के बीच में एक रेखा बन जाती है, वो दिखाई पड़ती है, वो रेखा ही सरस्वती की रेखा है।
और बाबा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर लेकर निकलती है, तो क्या वैसे ही कर्म में प्रवेश करती है तो वो भी सूक्ष्म शरीर लेकर प्रवेश करती है?
हर आत्मा सूक्ष्म शरीर लेकर के नहीं निकलती है, जिनकी अकाले मौत होती है, जिनकी उम्र पूरी नहीं होती है, वो अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के निकलते हैं और कोई में प्रवेश करते हैं, नहीं तो जो आत्मा है वो तुरंत दूसरे शरीर, दूसरे गर्भ में 1 सेकंड में प्रवेश कर जाती है। और
बाबा, प्लास्टिक का विघटन जमीन में होता नहीं है? प्लास्टिक का विघटन,
प्लास्टिक,
हाँ, प्लास्टिक का विघटन जमीन में होता नहीं है?
जमीन में
हाँ। तो जहाँ से वो अणु निकलता प्लास्टिक का, कहाँ से निकलता और कैसा जाता है?
ये सब मिट्टी के रूप हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कापर हो, चाहे जस्ता हो, ये सब पृथ्वी के मिट्टी के रूप हैं अनेक प्रकार के। जैसे देवियां कितने प्रकार की हैं? 9 प्रकार की। तो जो देवी है उसके भी 9 रूप हैं और 9 प्रकार के रूप में परिवर्तित देखी जाती है। सोने जैसी वो है जो सतयुग के पहले जन्म में पहले पहले जन्म लेती है, सरस्वती सतयुग की राधा के रूप में। कोहिनूर हीरा, हीरा वो है जो संगमयुग में तैयार होता है, रोशनी ही रोशनी भरी हुई है। फिर कम कम क्वालिटी वाले ऐसे ये भी है। और
यज्ञोपवीत के 3 धागे होते हैं।
हाँ जी,
ब्रह्मा विष्णु और महेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश धागे नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश से निकलने वाले ज्ञान के 3 धागे हैं। ये 3 रेखाएं जैसी हैं, ब्रह्मा की रेखा ज्ञान का धागा है, विष्णु की रेखा वो भी ज्ञान का धागा है, और शंकर की रेखा वो भी ज्ञान का धागा है। लेकिन तीनों का मेल जब तक नहीं होगा, जिसको कहते हैं ब्रह्म फांस, तब तक संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बनेगा। और संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाएगा बनेगा तो संपूर्ण देवता कहा जाएगा। इसको कहते हैं यज्ञ उपवीत। क्या? उप माने ऊपर, यज्ञ माने ज्ञानी यज्ञ। ये ज्ञानी यज्ञ की पराकाष्ठा है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के मुख से निकले हुए 3 प्रकार के ज्ञान के धागों का जिसमें समावेश है। इतना गहराई तक वो ज्ञान समा जाना चाहिए बुद्धि में, ब्राह्मणों की बुद्धि में, कि कोई क्लियर करना चाहे कि ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन, उनका फोटो हमको क्लियर करो, उनका एड्रेस हमको बताओ, उनका पूरा आईडी हमें चाहिए, तो पूरा पूरा समझा सके। तो कहेंगे यज्ञोपवीत धारी संपूर्ण ब्राह्मण। और
बाबा मुरली में बोला है कि बाप पावन को नमस्ते करते हैं, पवित्र को नहीं। तो अभी तो बाप पावन को नमस्ते करते हैं, पतितों को नहीं
है?
तो अभी तो सभी आत्माएं पतित है बाबा।
सभी आत्माएं पवित्र है, तो बाप बाप क्या किसी की सामने बुद्धि झुका रहा है? सरेंडर है तुम्हारे सामने? बाप तुम्हें सरेंडर दिखाई पड़ता है? बुद्धि से दिखाई पड़ता है? तो नमन करता है कि नहीं करता है? एक होता है ऐसे मुंडी को नमन करना, उसका अर्थ है, या मुंडी झुकाना ही अर्थ है, है? मुंडी झुकाना माना मन बुद्धि को झुका देना। जो आप कहें सो सच्चा, जो इस मुंडी ने कहा सो झूठा, तो कहेंगे झुकाना।
दिल में नहीं रहता बाबा, लेकिन एकाधिक बार ऐसे नाती संबंध से नमस्कार बोले तो मन में तो नहीं रहता।
ऊपर से बोल देते हैं नमस्कार, ऊपर से बोल देते हैं नमस्कार, हाथ जोड़ देते हैं, वो आगे गया और हम पीछे गए, ससुरा महतो गालियां देने लग पड़े।
बताएंगे
हाँ जी।